तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। स्वागत करता हूं मैं आप तमाम लोगों का इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। एक कहानी जो मैंने शुरू करी थी सीरियल किलर की, उसका आज ये लास्ट एपिसोड है। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी डिटेल चीज़ें बताऊँगा। बहरहाल, मुझे पिछले दो कहानियों का फीडबैक मिला, काफ़ी अच्छा था। उनमें से एक क्वेश्चन भी था मेरे दोस्त का मुझसे, काफ़ी अच्छे और फनी वे में उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो कहानी है वो काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं और थोड़ा सा स्लो जा रही है कहानी। सो मैंने उनको कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जिनका भी ये क्वेश्चन होगा, मैं उनको एक आंसर दे देता हूँ कि दरअसल मेरे हाथ में कोई कागज़ नहीं है, ना ही मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। दरअसल ये कहानी जो है वो मेरे जहन में है, मेरे ध्यान में है। और ये जो कहानियाँ हैं, ऑफ कोर्स ये सुनाने से पहले मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ ताकि नाम और डेट्स जो है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको मेंशन कर सकूँ, क्योंकि ये पिन पॉइंट होते हैं सारे फैक्टर्स जो एक कहानी को रियल बेस कहानी का मिर्च मसाला डालते हैं। सो उस वजह से बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि कहानी ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन क्योंकि अब डिटेलिंग जो है वो उसे स्किप तो कर नहीं सकते। सो मैं रहता हूँ डिटेलिंग पर थोड़ा सा, सो आप बेयर कीजिए प्लीज़। बहरहाल चले चलते हैं अपनी कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले एक क्विक न्यूज़ अपडेट जैसे रिवाज है, लेकिन उसे हम करेंगे पूरा कहानी के अंत में। सो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने आंखें देखी एक जार में रॉबर्ट पिक्टन के ट्रेलर पे, वो पुलिस वाले अपने सीनियर टीम को फ़ोन करते हैं। सीनियर टीम को फ़ोन करने के बाद वो लोग निकलते हैं घर की ओर रॉबर्ट पिक्टन के, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा चीज़ें मिली थी उस ट्रेलर में कि वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाए। सो ट्रेलर उसके घर में घुसने से पहले एक पुलिस वाला जो था, अब क्योंकि वहाँ पुलिस की टीम पहुँच गई थी, तो वो जो है वो दोनों भी बायफरगेट हो गए। एक टीम जो है वो स्लॉटर हाउस की और एक टीम जो है वो पिग फार्म की और एक जो टीम है वो उसके घर की ओर। स्लॉटर हाउस में जो टीम गई उसे वहाँ पर वो सब हथियार, तमाम हथियार मिले जो एक स्लॉटरिंग के काम के वक्त यूज में लाते हैं। उसके बाद जो टीम पिग फार्म के पास गई थी, दरअसल वो पिग फार्म के पास सिर्फ देखने गई थी, मुआयना करने गई थी कि यहाँ कुछ है तो नहीं। लेकिन ये जो शक है पुलिस वालों का वो उस वक्त यकीन में बदल गया जब वो पिग फार्म में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये स्मेल किसी मल मूत्र की नहीं थी, किसी जानवर के, ये कुछ अलग ही स्मेल था। तो वहां के पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि लेट्स चेक आउट, एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो स्मेल है वो किस चीज की है। वहां पर जब वो जाते हैं तब बहुत ही उन्हें शौक होता है, क्योंकि जैसे ही जानवर को वो हटाते हैं, जानवर को वहां पे हटाते हैं, वहां पर उन्हें मिलते हैं इंसानी शरीर के टुकड़े, कुछ फ्रेश, कुछ बहुत पुराने। उस वजह से वो और सकते में आ जाते हैं। और उसी वक्त जो टीम घर पे थी वो टीम घर के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि कहीं कुछ है या नहीं है, लेकिन घर वैसा का वैसा, बिल्कुल कोई भी सामान यहां से वहां नहीं, सब चीज बिल्कुल ठीक। और जैसे ही वो अपने रॉबर्ट पिक्टन के घर की तरफ जाते हैं तब उन्होंने देखा कि एक जो रास्ता है तहखाने की ओर जाने वाला, अमूमन घर के नीचे तहखाने होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे वो अपना स्टोर रूम या वॉशिंग रूम उसे कहते हैं। वो जैसे ही नीचे जाते हैं वहाँ पर एक लाइट जो थी वो ऑन थी, हल्के पीले कलर का एक बल्ब जो शुरू था, और वहीं पर एक मेज पर तमाम चाकू, हथियार और काफी धारदार हथियार थे। और उसी के पास उन्हें साफ करते हुए खड़ा था रॉबर्ट पिक्टन। जैसे ही पुलिस वाले रॉबर्ट पिक्टन को देखते हैं, उसको सरेंडर करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट पिक्टन बेहद खामोशी से अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। रॉबर्ट पिक्टन को ले जाया जाता है ऊपर, और जो पुलिस वाले हैं वहां पर वो तफ्तीश करने लगते हैं। वहीं पुलिस वालों को मिलते हैं कुछ ऐसे चीज, कुछ ऐसे एविडेंस जो उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखे, इस तरीके के तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल जहां पे रॉबर्ट पिट्टन अपने हथियारों को साफ कर रहा था, वहीं के पास में, उसी के पास में एक डीप जो फ्रीजर है जहां पे हम आइसक्रीम रखते हैं अमूमन, वो पड़ा हुआ था। सारी तफ्तीश होने के बाद एक एक करके जब पुलिस वालों ने उस हथियारों को चेक करा, उसके हथियार, उसके जो कपड़े थे स्लॉटरिंग के, उसे चेक किया, उसे अपने कब्जे में लिया, कुछ जूते, कुछ हैंड ग्लव्स, साथ ही साथ वहां पर एक हैंडकफ्स भी उन्हें मिला, कुछ सेक्स टॉयज भी उन्हें मिले। और जैसे ही वो डीप फ्रीजर खोलने गए, जैसे ही उन्होंने डीप फ्रीजर खोला, डीप फ्रीजर के अंदर थे 6 इंसानी शरीर के गर्दन, 6 इंसानी गर्दन, 6 नरमुंड। देखकर पुलिस वाले लगभग 3-4 कदम पीछे हो गए और उन्होंने काफी जोर से चिल्लाया, उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को बुलाया, पुलिस वाले जो ऊपर खड़े हुए थे वो नीचे आए, उन्होंने देखा और सब ने मिलके महसूस किया उस दरिंदगी का जो लम्हा जो वहां पर हुआ होगा। बहरहाल रॉबर्ट पिक्टन को तुरंत कस्टडी में लेकर लोग, पुलिस जो है वो निकलते हैं पुलिस स्टेशन के लिए, और वहां से जो भी चीजें मिली उसे देखकर पुलिस वालों को ये लगा कि शायद उन्हें वहां पर और भी कुछ ऐसे चीजें मिल सकती है, इंसानी शरीर, बॉडी पार्ट्स या कुछ और नरमुंड या फिर खोपड़ियां। बहरहाल जो टीम उसके कम्युनिटी सेंटर पे थी पिगीज पैलेस में, वहां पर भी ऐसी कुछ चीजें हो रही थी, वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें उन्हें मिल रही थी जो काफी इशारा कर रही थी किसी बिल्कुल वहशियाने, यू नो, एक ऐसा कारनामा जो शायद किसी ने ना किया हो। बहरहाल पुलिस पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, उसका जो है वो वीडियो सर्विलांसिंग होता है, उसका इंटरव्यू होता है, वहां पर उसे वो इंटरोगेट करती हैं पुलिस जो है वो रॉबर्ट पिक्टन को। सो वहां पर जैसे उसको इंटरोगेट किया जाता है तब वो बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल शांति से एक एक चीजें तमाम बताने लगता है उन 6 नरमुंडों के बारे में, उस पिग फार्म पर मिले हुए अवशेषों के बारे में और स्लॉटरिंग हाउस में मिले खून के बारे में। दरअसल रॉबर्ट पिक्टन जो है वो सारी चीजें एक एक करके बताता है पुलिस वालों को, और 6 खून ऐसे थे जो रॉबर्ट पिक्टन ने कहा कि उसने किए। लेकिन जैसे ही उसने अपने कारनामों के बारे में बताना शुरू करा, उसका आंकड़ा पहुंच गया 27 पे। जी हां, रॉबर्ट पिक्टन के हिसाब से उसने 27 लड़कियों को मारा था, और 27 लड़कियों को मारने के बाद उसने जो कहानी बताई, जो पुलिस वालों ने उससे सवाल करा कि आपने बाकी शवों का क्या किया, तो जो जवाब था वो काफी हिला देने वाला था, क्योंकि रॉबर्ट पिक्टन कहता है कि उसने जो बाकी के जो शव थे वो उसने अपने सुअरों को खिला दिए, और ये वही सुअर है जिसे काट कर वो तमाम वैनकुवर कस्बे में मीट बेचता था। उसके बाद उसने बताया कि कभी कभार वो जो शव है वो सुअरों को खिलाने के बाद उनका जो मांस है वो अपने पीगी पैलेस में भी ले जाया करता था, उस कम्युनिटी सेंटर में। ये सुनकर 2-3 पुलिस वालों ने, जो वो वहां के जो रेगुलर कस्टमर थे, मेंबर थे, उन्होंने तो उल्टियां करना शुरू कर दी। बहुत ज्यादा भड़के हुए थे वो लोग, और तमाम जो भी इस कहानी को सुनेगा वो भड़क ही जाएगा, क्योंकि इतना वहशियाना शायद ही कभी किसी ने अपनी लाइफ में सुना हो या देखा हो। पिगी पैलेस में रॉबर्ट पिक्टन ने बताया कि उसने एक प्रोस्टिट्यूट को मारा था उसी दिन जो वो पिगी पैलेस में लेके आया था, उसका नाम था मर्नी ली फेता। मर्नी ली फेता एक प्रोस्टिट्यूट थी, बकायदा ड्रग एडिक्टेड थी, उसे उसने खत्म किया उसी तरीके से, उसका जो मांस है वो अपने सुअरों को खिलाया, और उसके अगले ही दिन, ठीक अगले दिन, पिगी पैलेस में एक पार्टी थी। पिगी पैलेस में पार्टी के दौरान उसने एक पूरा का पूरा जो सुअर है वो वहां पर वो लेके गया उसको ग्रिल करने, और वहां पे ये सब होता था, पूरे सुअर को ग्रिल करके लोग मजे से उसका मांस जो है वो खाते थे। तो जैसे ही वो वहां पर वो लेके गया और जो सुअर है उसका ग्रिल पे रखा गया, तो उसने बताया कि उस सुअर ने मारनी का ही जो मांस है वो खाया था। और ताज्जुब की बात है कि उस पार्टी में मारनी के कुछ कजन्स और दोस्त भी मौजूद थे जिन्होंने वो सुअर का मांस खाया था। बहरहाल ये सब चीजें सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। फिर डिसाइड हुआ कि उसके फार्म की पूरी तलाशी ली जाएगी, खोजबीन की जाएगी। लगातार एक डेढ़ साल दो साल खुदाई हुई। खुदाई में तकरीबन 6 लोगों के नरमुंड जो डीप फ्रीजर से मिले और बाकी कुछ लोगों के मेरे ख्याल से कुछ बॉडी पार्ट जो कभी डिटेक्ट नहीं हो पाए, पता नहीं चल पाया उनका कभी। सो बहरहाल पुलिस को शक तो था ही कि 27 तो इन्होंने कहा है, लेकिन हो सकता है कि 27 से ज्यादा उसने खून करे हो, मांस खिलाया हो सुअरों को। सो तय होता है कि वो लोग जो है पुलिस वाले वो एक अपने अंडरकवर एजेंट को रखेंगे अपने रॉबर्ट पिक्टन के जेल में, जो वहां पर सीरियल किलर था उसके साथ में हम उसे रख देंगे अपने एक साथी को। बहरहाल ऐसा किया जाता है। कुछ ही महीनों में रॉबर्ट पिक्टन उस जो बंदा था वहां पे पुलिस का उसका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है, उसको वो सारी चीजें बताता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने पूछा कि आपने कितने लोगों को मारा है, तो रॉबर्ट पिक्टन हमेशा ये सवाल टाल दिया करता था, लेकिन उस दिन उसने उस चीज का जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं अपने 50वें खून करने से पहले पकड़ा गया। हैरत अंगेज तौर पर उसका जो दोस्त था जो पुलिस का एजेंट था अंडरकवर एजेंट, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसने ये कन्फेस किया रॉबर्ट पिक्टन ने। अब रॉबर्ट पिक्टन सर्विलांस पे तो था ही, पुलिस वालों को लगा कि इसने 50 लोगों को मारा है, लेकिन जब उसका जब कोर्ट पे ट्रायल चला सो मात्र 6 लोगों का उस पर कन्विक्शन लगा, 6 लोगों की मौत पर, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से एक नाइंसाफी थी उन सभी लोगों के साथ जो लड़कियां गायब हुई उनके कहीं ना कहीं दोस्त और रिश्तेदार रहे होंगे उनके साथ में। खैर रॉबर्ट पिक्टन की जो सजा मुकम्मल हो जाती है उसे 25 साल की बिना परोल की सजा मिल जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है उसको सजा मिलती है। बहरहाल उसके बाद 27 लड़कियां जिसका आधिकारिक तौर पर पहले जो कन्फेशन दिया था रॉबर्ट पिक्टन ने उसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थी सिवाय सिर्फ फोटोग्राफ और नामों के, वो 6 नरमुंड, उनको सुअरों को खिलाना और उसका उस सुअरों का मांस पूरे तमाम अपने शहर में बांटना, ये काफी भयावह था। हालांकि जब इसका कन्फेशन चल रहा था रॉबर्ट पिक्टन का, तब इन्होंने कुछ ऐसे क्राइम्स भी सुनाए पुलिस वालों को जो कि मुकम्मल नहीं हुए। जैसे कि इन्होंने कहा था कि जब एक उसी दरमियान जब ये चीजें हो रही थी, इन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर बुलाया था अपने फार्म पे, और उसको बेहोशी का इंजेक्शन, अब क्योंकि उस दिन जो बेहोशी का जो उसके पास दवा थी वो पर्याप्त नहीं थी, सो उसने बची कुची जो दवा थी वो उसको दे दी मिलाकर। अब शुरू होता है खेल रॉबर्ट पिक्टन का कि वो चाहता है कि उस लड़की को खत्म करेगा, लेकिन कैसे तो भी अचानक उस लड़की की आंख खुल जाती है, और वो जब आंखें खोल के देखती हैं तब रॉबर्ट पिक्टन उसके सामने चाकू लिए खड़ा है और वो उसे चाकू मार देता है। मल्टीपल टाइम्स स्टैबिंग जो है वो उस लड़की की होती है, लेकिन फिर भी उस औरत ने अपने आप को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करी। उसने रॉबर्ट पिक्टन के ऊपर भी हमले किए जिसमें रॉबर्ट पिक्टन भी घायल हुआ। उसके बाद वो वहां से भागने में कामयाब हुई और भागने में कामयाब होते जैसे ही वो उसके फार्म से निकली उसके बाद वो जंगल से गई और जंगल से होते हुए वो एक रोड पर पहुंची। और ये वही लड़की है जो मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बताया कि एक दंपत्ति के कार के सामने आ जाती है। ये वही एक लड़की है जो रॉबर्ट पिक्टन के फार्म पे गई और जिंदा वापिस आई। बहरहाल ऐसी पुलिस वालों को फिर लगा कि शायद 49 जो कन्फेशन है रॉबर्ट पिक्टन का वो सही है कि ऑलमोस्ट 49 लड़कियों को उसने मारा है। लेकिन जब ये खबर फैली आग की तरह तब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों का, पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस ने काफी यहां पर जो है मतलब अपने अधिकारों का मिसयूज किया। उसके बाद कोर्ट पर भी काफी लांछन निकले बिकॉज किसी को उम्र सजा देना, ताउम्र जेल में रखना 25 साल के पच्चीस साल के बाद पैरोल मिलने पर, ये काफी नहीं थी कनाडा के लोगों के हिसाब से जो वहशियाना उसने करी है रॉबर्ट पिक्टन ने। बहरहाल ये सब हुआ, आज जो रॉबर्ट पिक्टन है वो जेल में है और जेल में ही उन्होंने अपने जो जो अंडरकवर एजेंट थे उनको ये सारी चीजें बताई थी 49 एंड ऑल। लेकिन जब कोर्ट में रॉबर्ट पिक्टन को ले जाया गया था तब एक वाक्य ऐसा हुआ था कि उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते थे, एक वकील ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इन लड़कियों को क्यों मारा, इनसे आपकी क्या दुश्मनी थी। उस कोर्ट में रॉबर्ट पिक्टन ने अपना इतिहास बताया, अपना पास्ट जो शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। पास्ट ये था कि रॉबर्ट पिक्टन 1949 में जन्मे थे वैनकूवर में, और वैनकूवर जो है वो कनाडा में स्थित, उसी के पास 22 अक्टूबर को आई गेस उनका जन्म हुआ था रॉबर्ट पिक्टन का। उनका ये कहना था कि उनके जो माली हालत थी वो पहले से ठीक नहीं थी क्योंकि पापा जो थे वो फार्मर थे और उसके बाद कभी कुछ ऐसा हो नहीं पाया। उनके जो फैमिली थी, फैमिली में रॉबर्ट को पकड़ कर दो भाई एक बहन, और उनके पापा जो थे, उनके फादर जो थे लियोनार्ड पिक्टन और लुइस पिक्टन, ये जो है पोर्ट कोइतलम करके एक जगह है वैनकूवर में, कस्बा है, वहीं पे उनका जन्म हुआ, वो वहीं पे पले बढ़े। इनके फादर की जो है वो डेथ हुई थी 1978 में रॉबर्ट पिक्टन के, और उसी के कुछ सालों बाद उसकी माँ भी चल बसी। लेकिन कहा जाता है कि रॉबर्ट पिक्टन जब अपने स्कूल में थे, स्कूलिंग कर रहे थे, तब उन्हें स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि सारे लड़के जो है वो बुली करते थे रॉबर्ट पिक्टन को, क्योंकि उनके शरीर से एक बदबू आती थी जो कि ज्यादातर सुअरों जैसा फील होता था बाकी बच्चों को, तो वो काफी उसको चिढ़ाते थे कि पिग बॉय या कुछ ऐसा कह के। इस वजह से रॉबर्ट पिक्टन को स्कूल से नफरत हुई थी। तब वो अपने माता पिता के साथ ज्यादातर अपने फार्म पे रहते थे। उनकी जो बहन थी वो अपने परिवार के माली हालतों से तंग आकर अपने ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी और कभी नहीं लौटी। हालांकि उनका कोई दोस्त नहीं था बचपन में, लेकिन रॉबर्ट पिक्टन कहते हैं कि जब भी उन्हें अकेलापन लगता था वो अपने फार्म में एक उनका जो पालतू गाय है उसके बछड़े के पास जाके बैठा करते थे, उससे बातें करते थे, और वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो गाय का जो बछड़ा था वो काफ़ी अच्छा दोस्त था उनका। लेकिन एक दफ़ा जब रॉबर्ट पिक्टन उसके भाई मार्केट में गए थे और वापस आए, तब उन्होंने अपने बछड़े को, अपने दोस्त को नहीं देखा वहाँ पर, गाय के बछड़े को नहीं देखा, तो वो थोड़े से पैनिक कर गए, उन्हें ढूंढने लगे कहाँ है उनका दोस्त। तभी वो पापा उनके फादर को बताने जाते हैं और उनके फादर जो थे स्लॉटर हाउस में उसी गाय के बछड़े को काट रहे होते हैं। उसे देखकर काफ़ी बुरा लगा रॉबर्ट पिक्टन को। रॉबर्ट पिक्टन ने तकरीबन कहा जाता है 4 या 5 दिन खाना नहीं खाया, अपने पिताजी से बात नहीं करी थी। लेकिन उसके पिताजी आए एक दिन उससे बात करने के लिए और उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम अपने पालतू जानवर का एक मांस का टुकड़ा खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब किसी इंसान का, किसी 12 या 14 साल के बाप का ये कहना कि अगर आपको पालतू जानवर, अगर आपको दुख हो रहा है तो आप अपने पालतू जानवर का मांस का टुकड़ा खा लीजिए, तो आप समझ सकते हैं उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी। बहरहाल रॉबर्ट पिक्टन ने उस मांस का टुकड़ा खाया, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उनके पापा और उसके माँ जाने माता जी के जाने के बाद रॉबर्ट पिक्टन कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उनका भाई भी कुछ सालों में अलग हो गया, कहीं और जाके बस गया, और उसी वक्त रॉबर्ट पिक्टन जो है ये सब खूनी वारदातों को अंजाम देता था। बहरहाल आज रॉबर्ट पिक्टन 72 साल के हैं, वैनकोर के जेल में हैं, शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और जो इतना वहशियाना हरकत कर सकता है, मुझे तो लगता है कि शायद ऊपर भी उसे जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल ये थी कहानी रॉबर्ट पिक्टन की, एक ऐसे सीरियल किलर की जो आज तक कनाडा के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हॉरिफाइड क्राइम इन्होंने किया है। लगभग सारे जनता का और पुलिस प्रशासन का दिमाग जो है खराब हुआ इनकी कहानी सुनकर। लेकिन बहरहाल आज एपिसोड नंबर 3 कहानी का ये अंत है। और जैसे कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि एक क्विक न्यूज अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी जो कुछ साल पहले अपने एक राउडी विंग कमांडर अभिनंदन, उन्होंने पाकिस्तानी फौज के F-16 जहाज को खदेड़ दिया था, वो MiG-21 MiG-21 रिटायर्ड होने जा रहा है, रिटायर्ड हो रहे हैं, आर्मी जो है माफ कीजिए एयर जो अपने एयर ऑफिशियल्स हैं वो उसे जो है वो बिल्कुल रिटायर्ड करना चाहती हैं MiG-21 को। और काफ़ी अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से ये एयरफोर्स का, बिकॉज MiG-21 यही वो प्लेन है जो सबसे ज़्यादा क्रैश होता है। इसकी भी अलग अलग कहानी है, इसका भी एक अलग हिस्ट्री है MiG-21 का, वो कभी हम डिस्कस करेंगे कभी किसी और एपिसोड में। सो ये था न्यूज़ अपडेट, मुझे लगा कि आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए इसलिए मैंने किया। हालांकि मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के फीडबैक का, और लिखते रहें। और आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना तो आप मेरे इंस्टाग्राम जो मेरा अकाउंट है आप उसे फॉलो कीजिए, Aniket0102 Aniket0102। आप इंस्टाग्राम में मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपनी पसंद की कोई कहानी जो आपका जॉनर हो, जिसे लगता है कि आपने सुनना चाहिए, आप मुझे लिख के भेजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए एक नई और रियल रियल बेस इंसिडेंट कहानी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। सो तब तक आप अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आप सुनते रहें, देखते रहें, और फॉलो कर दीजिए प्लीज़ इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक गुड नाइट।